खाएं और खाने का एंजॉय का मजा लें। मिसेस सागा में कॉल करें 9052323663 और अगर आपको ओकफिल में जाना है तो 9052262294। चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, जबरदस्त खाने, जबरदस्त सेटिंग और गोल्फ कोर्सेज। अगर आपको अपने कोई छोटे बड़े इवेंट्स कराने हैं इनको कॉल कर लें, इनका नंबर है 9054588888 एंड डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा डॉक्टर नाजिया रहमान होती हैं जनाब यहां पे, जबरदस्त किस्म की दांतों की सर्विसेज देती हैं। आप इनको कॉल कर लें एट 9058721111 एंड स्पीयर एंड मके। सर्दियां होने वाली हैं जनाब शुरू और सर्दियों के जबरदस्त किस्म के कपड़े जो हैं स्पीयर एंड मके पे आगे हैं, तो आप भी वहां पे जाएं और उनके डिस्काउंट्स और बहुत सारी बहुत हाई एंड वहां पे उनकी चीजें होती हैं स्पीयर एंड मके पे, तो आप जाके उसमें भी अपनी खरीदारी कर सकते हैं। चीजें बिल्कुल महंगी नहीं है, बहुत हाई एंड इटालियन सूट अगर आप कहीं पे और लेंगे तो आपको 1000-1200 से कम का नहीं मिलेगा, ये आपको जो है सिर्फ $250 में दे रहे हैं 100% इटालियन वुल का। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैकेट्स हैं और कैशमीर जो है वो स्वेटर्स हैं। दे आर लोकेटेड एट 1535 मायरसाइड ड्राइव और इनका नंबर है 9056703388। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, ये जो आज फेयरवेल पार्टी जो एक फुल कोर्ट रेफरेंस में दी गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है काजी फैज ईसा को, उसमें ये नहीं आज आए थे और उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि इनका सारे का सारा पीरियड जो था ईसा साहब का, इट वाज पैटीनेस और विंडिक्टिवनेस के ऊपर बेस्ड था। ईसा साहब ने 29 से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे ओथ लिया था ऑन सितंबर 17, 2023 और अब जबकि ये रिटायर आज के दिन हुए हैं तो इसकी जगह पे कल ही अनाउंस किया गया था कि याह्या अफरीदी जो है अब कल 26 को यानी के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। इन अ लेटर टू सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जो चीफ जस्टिस हैं ये नहीं बन सकते थे अगर 26th अमेंडमेंट ना होती, और वैसे तो ये कस्टमरी है कि जो आखिरी चीफ जस्टिस होता है उसको एक्नॉलेजमेंट दी जाती है जब वो जा रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह की कोई ट्रेडिशन छोड़ी नहीं है कि जिसके के लिए मैं इनको बोलता, और मैंने इसी असूलों के बिना पे जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से साकिब निसार उनके भी रेफरेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से को एक्सीड करते हुए अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हुए कुछ काम किए थे। उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल होता है लोगों के राइट्स को डिफेंड करना, इंडिपेंडेंस ज्यूरी करना और ये इंश्योर करना कि जस्टिस हर किसी को मिले। चीफ जस्टिस ईसा जो है उन्होंने ये बिल्कुल नहीं किया, वो ऑस्ट्रिच की तरह अपना सिर जो है वो रेत में देके बैठे रहे और हर चीज के लिए कंप्लेसेंट रहे और बिल्कुल जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और जो जुडिशरी को प्रेशर्स डाले जा रहे थे उससे बिल्कुल इनडिफरेंट रहे। तो इसलिए ये जो सारे इंटरफेरेंस होती थी जुडिशरी के मामलों में उसके लिए इन्होंने दरवाजे ज्यादा जो है वो खोले हैं और जुडिशरी का जो रोल था उसकी जो इज्जत थी उसको इन्होंने खराब किया और बिट्रे किया, और इनके अंदर इतनी भी जरूरत नहीं थी कि ये जो है जो गलत चीजें हो रही थी जुडिशरी में उसको ठीक करते, बल्कि इन्होंने कोर्ट्स को वीकेंड किया और बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया रूल ऑफ लॉ पे। खास तौर पे इन्होंने कहा जी इन्होंने ब्लेट एंड डिसरिगार्ड शो किया जो जुडिशरी की इज्जत थी और जुडिशियल हार्मनी थी और जो ये डायलॉग होता था उसके अंदर ये एंगेज नहीं करते थे, और जो होती है जुडिशियल लीडरशिप उसको उन्होंने एक बैड नेम दिया। इसी तरह उन्होंने कहा जी कि जुलाई 12 का जो रिजर्व सीट का जो वर्डिक था उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की परवाह नहीं की और ये बहुत ही शेमफुल है और इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव है उसकी बात ज्यादा मानी और जुडिशरी की इज्जत को ख्याल में नहीं रखा। तो जनाब काफी बातें इन्होंने की। रणा सिंघानिया साहब जो है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर ऑन पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर्स, उन्होंने कहा कि ये जो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुई है जिसने के रोका है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से, इसमें पीटीआई का हाथ है। वो कहते हैं जी कि पीटीआई जो है केओस बेंड पार्टी है और वो जिस चीज को हाथ लगाती है उस चीज को ये डैमेज कर देते हैं। पीटीआई के लॉ मेकर्स जो हैं वो बार बार कह रहे थे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है जस्टिस मंसूर से, और वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस जो है अक्टूबर के महीने में बहुत मेजर जो हैं वो स्टेप्स लेगा और मेजर्स लेगा, और उन्होंने अंडरमाइन की उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी और इसीलिए फिर हमको 26th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पास करना पड़ा और जस्टिस मंसूर जो है उसकी वजह से नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके, हालांकि वो मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल जो ये अब आ गया है इसमें अब सीनियोरिटी जो है उसको नजर में नहीं रखा जाता है। तो वो कहते हैं जी सारे का सारा ब्लेम उन्होंने पीटीआई पर डाला, उन्होंने कहा जी इनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा जनाब, आज जैसे हमने आपको बताया कि फुल रेफरेंस जो था रेफरेंस वो फेयरवेल दिया जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को काजी फैज ईसा साहब को, तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ा हम्बल्ड हूं बाय द प्रेज जो आप लोगों ने किया और मेरी जिंदगी में ये बहुत सारा चेंजिंग मोमेंट्स जो थे मेरे 42 ईयर लॉन्ग जुडिशियल करियर में आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने जो यंग लॉयर्स थे उनसे मैं सीखा। मेरे लिए बड़ा ही ऑनर है कि आज फुल कोर्ट रेफरेंस है मेरे रिटायरमेंट के ऊपर। ये बड़े इमोशनल होते हुए अपनी उन्होंने फेयरवेल स्पीच दी, उन्होंने कहा जी कि मैं अब बहुत ही फ्रीडम के साथ जा सकता हूं और हम जो है मेरे में चेंजेस उस वक्त आएंगे और प्रोफेशनल जर्नी में मुझे उस वक्त समझ आनी शुरू हुई जब मुझे पहली दफा अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान और ओवरनाइट मेरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि उस वक्त कोई भी जो थे जजेस नहीं थे बलूचिस्तान के अंदर जो ये रोल लेते थे, और जो ऑडियंस थी उसमें उनकी वाइफ सरीना भी बैठी थी और फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स भी बैठे थे जब वो बात कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बेगम की भी बड़ी उसमें तारीफें की। और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी के जजेस थे वो भी थे, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, सीनियर लॉयर फारूक एश नायक और जस्टिस याहिया आफरीदी भी थे। इस मौके पे बात करते हुए ईसा साहब ने कहा कि भई औरतों से डरो, औरतें जो हैं मर्दों से बहुत आगे निकल चुकी हैं, तो आप उनके रोल को भी सराहें। और फिर उसके बाद जी जस्टिस आफरीदी साहब ने बहुत ज्यादा ईसा साहब की तारीफ की, उन्होंने कहा जी कि मैं ईसा साहब को बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स समझता हूं और मैंने उनसे बहुत ज्यादा लर्न किया और सुप्रीम कोर्ट में हम उनको मिस करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं अलीमा खान और उज्मा खान, उनको जो है बेल दे दिया गया है बाय एंटी टेररिस्ट कोर्ट एटीसी इन इस्लामाबाद, और इनको पकड़ा गया था डी चौक में प्रोटेस्ट करने पे, हालांकि बेचारियां ये तो प्रोटेस्ट भी नहीं करी थी, साइड पे खड़ी थी इनको जब पकड़ के लेके गए थे। वायरल एनीवेज, इनको जनाब बेल जो इनकी प्रूव की है जज अब्दुल हसनाद जुल्करनैन ने इन अ केस रजिस्टर्ड एट कोसार पुलिस स्टेशन इन इस्लामाबाद, इन दोनों को जो है कस्टडी से अब रिलीज जल्दी ही किया जाएगा, वन डे आफ्टर इमरान खान की जो वाइफ है बुशरा बीबी उनको भी फ्री किया गया था अडियाला जेल से। इन दोनों को अरेस्ट किया था अक्टूबर 4, 2024 को, और कोर्ट ने आज इनको बेल दी है अगेंस्ट श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 20,000 ईच। इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस थे और कुछ टेररिज्म के भी केसेस थे। ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली, अच्छा जी टेररिज्म के भी केसेस थे, और पीटीआई जो थी उस वक्त उसने लॉन्च किया हुआ था एंटी गवर्नमेंट कैंपेन और फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और इसलिए भी इमरान खान साहब को जेल से रिलीज करो। दिल्ली पुलिस जो है जी आज उसने अपनी बहुत 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 बड़ी कामयाबी मनाई, क्योंकि उसके स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे जो बड़े बड़े गैंग्स थे उनके 7 शूटर्स और भी कुछ लोग जो हैं वो पकड़े हैं, और कहा जा रहा है कि ये प्लान कर रहे थे टारगेट करना सुनील पहलवान को जो कि गंगानगर के रेजिडेंस हैं राजस्थान में, और राजकुमार गौर को जो कि नेफ्यू हैं फॉर्मर एमएलए के राजस्थान के अंदर। ये जो टीम थी दिस वाज लेड बाय एसीपी धर्मेंद्रा जिन्होंने के इनको अरेस्ट किया। स्पेशल सेल जो है वो बड़ा अग्रेसिवली अब ये सारे गैंग्स जो हैं रोहित कौशल, नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार, इन सब के पीछे पड़ा हुआ है। एडिशनल सीपी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल प्रमोद कुमार कुशवाहा ने कहा कि हम इनको जो है नहीं छोड़ेंगे और ये अरेस्ट करेंगे हाई प्रोफाइल ये जो गैंगस्टर्स बने हुए हैं। खासतौर पे ये सारी कैंपेन उस वक्त शुरू हुई जब इन्होंने एनसीपी के लीडर बाबा सिद्दीक को मुंबई में अक्टूबर 12 को मारा, उसके बाद हरकत में आ गई पुलिस बहुत ज्यादा, और बिश्नोई गैंग जो है उसने उसका रिस्पांसिबिलिटी लिया था। अभी करंटली तो जिन लोगों को पकड़ा है उसके उसमें सिद्दीकी के मर्डर का तो कुछ एविडेंस इनको या लिंक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी पुलिस कह रही है हम इन्वेस्टिगेशन बिठाए हुए हैं। इन्होंने कहा जी शूटर्स ने हमको रिपोर्ट किया था कि वो एक्ट कर रहे थे ऑन द ऑर्डर्स ऑफ आरजू बिश्नोई जो कि क्लोज एसोसिएट है लॉरेंस का और उसके भाई अनमोल बिश्नोई का। पुलिस ने कहा जी कि इनके पास से हमको 6 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, 24 लाइव कार्ट्रिजेस, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम टू ट्रैक द टारगेट समय मिले हैं। जो अनमोल बिश्नोई है लॉरेंस बिश्नोई का भाई, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कनेडा में रहता है। ले भाई आमिर साहब, हाँ जी कनेडा में है जी ये, नहीं मिसेस आगा में ही होगा, मुझे नहीं ब्रैम्पटन में होगा, तो हो सकता है बीसी में हो। बहरहाल एनीवेज वो कहते हैं जी ये कनेडा में है और ये है पीछे इसके सिद्दीकी के मर्डर के पीछे। इसके अलावा एनआईए कहता है कि ये इन्वॉल्व है जो सलमान खान के बाहर घर के बाहर जो शूटिंग हुई थी अप्रैल में उसमें भी, इसीलिए जो एनआईए है उसने अनमोल के लिए 10 लाख रुपए का बाउंटी जो है वो ऑफर किया। इसके साथ साथ एनआईए ने और एक 10 लाख का बाउंटी ऑफर किया है कि उसने कहा जी कि जो बाकी के भी कोई गैंगस्टर अगर आप हमें बताएंगे तो हम उनके लिए आपको पैसे देंगे। तो पुलिस ने जो है अभी अरेस्ट किया है रिजवान अंसारी को, और ये एक और मेंबर है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और काला जथे जाथेडी ग्रुप गैंग का, और इसके ऊपर जो है वो 25,000 रुपीज का बाउंटी था। उन्होंने कहा जी कि इसका क्लोज एसोसिएट जो है शहबाज अंसारी वो जो है उसको भी अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो आर्म सप्लाई कर रहा था फॉर द मर्डर ऑफ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, और वो कह रहे हैं कि और भी कुछ लोग जो हैं वांटेड हैं और बहुत सारे केसेस में इन यूपी, तो पुलिस अब इनके पीछे पड़ गई है। बीजेपी के लीडर जो हैं फॉर्मर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवा राज बोमाए, उन्होंने आज बहुत ज्यादा कांग्रेस के ऊपर एतराज किया। उन्होंने कहा जी कि आप अपना प्रेसिडेंट जो है मल्लिक अर्जुन खड़गे, उसको बहुत बड़ा वो लीडर है और उसको आप इज्जत नहीं करते हैं। उनको पता चला था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर्स व्यान के अंदर देने के लिए आई थी तो उनको शायद एलएचडी अंदर नहीं जाने दिया था। कांग्रेस के लीडर वीसी वेणुगोपालन ने कहा कि तुम लोग कैसे इतना झूठ बोल सकते हो। ये कुछ देर तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी बाहर खड़ा रहना पड़ा था क्योंकि अंदर से डोर लॉक था, लेकिन फिर उसके बाद सब लोग अंदर गए और इसने अपने नॉमिनेशन पेपर्स प्रियंका ने मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रेजेंस में ही दिए। इससे पहले बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन सीआर केसावान जो है उन्होंने भी बड़ा शॉक का इजहार किया कि ऐसा ट्रीटमेंट दिया कांग्रेस ने अपने प्रेसिडेंट को। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि ये जो कांग्रेस है ये अब शो कर रहा है कि ये कितना अनटचेबल पॉलिसीज के ऊपर बिलीव करता है, और दलित जो है उनको कांग्रेस के अंदर कितना जो है वो डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट किया जाता है और उनको थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता है। इसके ऊपर सीनियर कांग्रेस लीडर टी एस सिंह देओ ने कहा कि चूंकि अब जो बीजेपी है हिंदू मुस्लिम हेट्रेड की पॉलिसी को फैलाने में और वोट लेने में नाकाम हो गई है, इसलिए वो डेस्परेट हो गई है और अब ये रिजर्वेशन के इश्यूज जो हैं इनको हाईलाइट कर रही है जीतने के लिए जो भी आने वाले इलेक्शंस हैं कुछ स्टेट्स में महाराष्ट्र में और जैसे और झारखंड वगैरह में। तो उन्होंने कहा जी कि बीजेपी जो है वो उसके अपने खुद के जो है एंटी रिजर्वेशन के रिमार्क्स हैं, तो क्या वो जो आरएसएस के जो इनके चीफ है मोहन भगवत उनके वो रिमार्क्स को डिनाई कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन देता है दलित्स को और दूसरों को भी जो है ओबीसी, तो इसके अंदर जो है हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है आमिर साहब, खुश हो? और तुम्हारी जो फेवरेट हीरोइन है उसकी अब नेक्स्ट स्टोरी है कृति सेनन। ओए होए 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 होए, आज घर नहीं जाओगे तुम। आ चुकी है, आज रिलीज हो गई है ओटीटी पे। अच्छा जनाब, काजोल और कृति सेनन की जो मच अवेटेड रोमांटिक थ्रिलर था दो पति हैं जी, वो ओटीटी पे आज आ गया है। और ये काजोल की पहली फिल्म है जिसमें एज अ कॉप वो देखी गई है, और कृति का फॉर द फर्स्ट टाइम डबल रोल है, और फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैज ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस एज अ प्रोड्यूसर, शी इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। और इसके अंदर शहीर शेख जो हैं वो भी, उन्होंने भी बॉलीवुड का डेब्यू किया है। लोगों ने बेतहाशा इस फिल्म की तारीफ की है, उन्होंने कहा जी कृति का जो डबल रोल है वो जो चौक और चीज का जबरदस्त है, काजोल बड़ी फियर्स लग रही है और फियरलेस लग रही है पुलिस के रोल में, और कृति तो एक्चुअली नेल्ड द टू साइड्स दैट शी हैज पोर्ट्रेट सौम्या और शेली, और क्या जबरदस्त काम किया काजोल ने भी। और उसका जो फिल्म का मैसेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों ने तो कहा कि इट्स अ फिनोमिनल फिल्म। फिनोमिनल से कुछ याद आया अर्फा जी ये वर्ड बहुत बोलती हैं, तो अब हिंदुस्तान में भी लोग बोलने लगे हैं। ठीक है, कॉपी कर। अच्छा जी, और जनाब वरुण धवन साहब ने अपने दिल के दुख जो है वो सुनाए। उन्होंने कहा एक दफा मैं अपने वालिद साहब जो है डेविड धवन साहब के साथ जो है लंदन में था, वहां पे मेरे बाप की फिल्म जो थी बड़े मियां छोटे मियां जो थी वो रिलीज हुई थी, और वो क्लैश कर रही थी करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है। मुझे कुछ शौक नहीं था देखने का बड़े मियां छोटे मियां, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था कुछ कुछ होता है देखने में। तो एक प्रोड्यूसर जो थे लंबी चौड़ी उन्होंने लिमोजीन जो है वो भेजी, और जब हम लंदन की स्ट्रीट से गुजर रहे थे तो मैंने अपने बाप को कहा कि मुझे वो फिल्म देखना है वो ज्यादा अच्छी है, तो मेरे बाप ने कहा तुझे इधर ही सड़क पे उतार दूंगा मैं। तो वो कहते हैं अब बताओ मैं क्या करता फिर। तो ऐसे भी होता है। और जनाब आलिया भट्ट साहबा जो है उन्होंने बड़ा बैश किया है उन लोगों का जिन्होंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया है, कि कह रहे हैं कि जी आलिया भट्ट मुंह टेढ़ा कर करके बातें कर रही हैं, और क्योंकि लोगों ने कहा इसका बोटॉक्स हैज गॉन रॉन्ग, तो उन्होंने कहा है कि ये गार्बेज है और ये बड़ा डैमेजिंग है और मुझे बड़ा सता रहा है। इसके ऊपर जो है फिर मीडिया ने डॉक्टर साय गणपति जो कि ये इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं बड़े बड़े लोगों के इंडिया में, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी ये जो फेशियल एस्थेटिक्स एक्सपर्ट जो है आप, तो आप, मैं तो सिर्फ ऑन मेडिकल बेसिस बात करूंगा, और जो लोग कह रहे थे कि इसकी स्माइल बड़ी क्रुकेड हो गई है और राइट साइड के ऊपर पूरी की पूरी मूव कर जाती है, इसको पैरालिसिस कहते हैं, और ये होता है जिस वक्त बोटॉक्स लगाया जाता है तो वो जो इंजेक्शन होता है वो माइग्रेट करता है फेस के अंदर। तो उन्होंने कहा जी कि ये मेरे भी कुछ पेशेंट्स के अंदर होता है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये एस्थेटिक्स जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसमें वरी करने की कोई बात नहीं है, ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है और ये माइन्यूट सी कॉम्प्लिकेशन है जो होती है तो इंजेक्शन से, तो इसको ठीक किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, ते पायन इतना लड़ाई करने की जरूरत नहीं है आलिया भट्ट के साथ। और जनाब द थर्ड टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड नहीं इंडिया नहीं इंग्लैंड इंग्लैंड के बीच में जो चल रहा है उसका जो है वो चल रहा है अभी, और इसके अंदर जाहिर है कि ये फाइनल जो है टेस्ट है, क्योंकि 3 टेस्ट सीरीज थी ये, एक एक से जो है ये अब चल रही है, और अब ये जो है ये टेस्ट जो आखिरी वाला है ये फाइनल है, ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चल रहा है। लेकिन इंग्लैंड को बड़ा ही आज दुख उठाना पड़ा, फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर इन्होंने अपने दोनों ओपनर्स जो थे बेन डकेट जो है वो उसको साजिद ने आउट किया और जैक क्रॉली को आउट किया नोमान अली ने, उसके बाद फौरन ही ओली पोप जो है उसको फिर से नोमान ने आउट किया। इंग्लैंड जो था 20 for 3 था इन 8 ओवर्स ऑफ द सेकेंड इनिंग्स, और मैच जो था सस्पेंड किया गया था लाइट के कंसर्न की वजह से, और इंग्लैंड जो था उसने अभी 9 ओवर्स ही किए थे, जब दिन खत्म हुआ तो 24 for 3 थे, वो ट्रेल कर रहे हैं 53 रन से। इससे पहले साउथ चकील ने अपना चौथा टन बनाया, ही मेड 107 रन, और टीम जो थी उसको बंडल अप किया इंग्लैंड ने 344 पे, 8th विकेट स्टैंड के साथ 88 पे नोमान अली के साथ उन्होंने खेला, नोमान ने बनाए 45। एट ब्रेक साजिद खान जो थे वो थे 1 पे, पाकिस्तान जो है वो जो है उसने सिर्फ 2 विकेट अब उसके पास रह गई हैं टू विन द सीरीज, अगर वो दोनों लड़के अच्छा खेल गए तो बस फिर पाकिस्तान जीत जाएगा। रेहान अहमद ने लेकिन जो इंग्लैंड का था उसने बड़ी तबाही मचाई, उसने भी 3 विकेट लिए फॉर 54 इन द फर्स्ट सेशन। पाकिस्तान वॉज 187 for 7 एट लंच, बट शकील नोमान स्टैंड जो है उसने इंग्लैंड की सारी एक्सपेक्टेशंस को पानी में डुबो दिया। रेहान ने लेकिन आउट किया मोहम्मद रिजवान को 25 पे, सलमान आगा को 1 पे, आमिर जमाल को 14 पे। इससे पहले साजिद खान ने ली 6 विकेटें फॉर 128 टू डिसमिस द विजिटर्स फॉर 267। कैप्टन शान मसूद जो थे उनको आउट किया फिर इंग्लैंड ने 26 पे, तो अब देखते हैं कौन जीतता है। पाकिस्तान शाहींस जो हैं जी दे फेल शॉर्ट ऑफ डिफेंडिंग 136 अगेंस्ट श्रीलंका ए इन सेमीफाइनल्स, और एज अ रिजल्ट श्रीलंका जो है वो अब फाइनल ऑफ इमर्जिंग टीम T20 एशिया कप में पहुंच गया है 7 विकेट की विन के साथ। लाहिरी उडारा, अहान, विक्रमा सिंघे इन्होंने 64 रन बनाए, उडारा ने बनाए 43 of 20 balls, अहान ने 20 नॉट आउट, और साहन अर्चा चिगे जो थे 17 पे थे। पाकिस्तान के सुफियान मुकीम और अब्बास अफरीदी ने एक एक विकेट लिया, लेकिन पाकिस्तान जीत गया। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, एंड दिस न्यूज इज अ रियल क्रैकिंग न्यूज, एंड दिस न्यूज इज सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, उन्होंने इन्वाइट किया है अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को टू कराची। उन्होंने कहा जी कि मेरा बड़ा डिजायर है कि ये लोग यहां पे आए। ये बातें उन्होंने अर्जेंटीना के जो एम्बेसडर थे सेबास्टियन सेयस उनके साथ उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि हम सिंध के अंदर अर्जेंटीना की टीम को लाके और फुटबॉल के अंदर हम अपने टाइज में उनको बीज कर सकते हैं। सायस साहब ने भी बड़ा इंटरेस्ट शो किया सिंध के अंदर बहुत सारे वेयर हाउस खोलने के लिए, और जी वड्डे वड्डे अमेजोन की तरह दे वेयर हाउस खोल दियो भाईजान, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मेन एजेंडा जो था लेकिन जो मीटिंग का वो ये था कि एक फुटबॉल टीम सिंध के अंदर जो है वो डेवलप की जाए। मुराद अली शाह ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं कि अर्जेंटीना की टीम ना सिर्फ यहां पे आए बल्कि जो हमारे लड़कों की टीम है यानी कराची की जो टीम है उसके अंदर भी अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के प्लेयर्स खेलें।
क्या बात है भैया,
क्या बात है,
आपका हीरो जो है वो भी आ जाएगा।
आ जाएगा जी, और ना भी आए तो कोई वड्डी गल नहीं है, दूसरे बहुत सारे अर्जेंटीना दे बंदे ओ आ जाए, अच्छे आ जाए, तो हमारे लियारी के बच्चे कोई कम है बेचारे, पैरों में जूता भी नहीं और क्या जबरदस्त फुटबॉल खेलते हैं वो, लियारी के बच्चों को देखा खेलते हुए कभी,
बहुत जबरदस्त।
हाँ जी, तो टैलेंट की कमी नहीं है, बस लोगों की कमी है, बस अर्जेंटीना वाले आ जाएंगे ना तो ये हमारे
टैलेंट की, एक और टैलेंट की कमी नहीं है, इंटरनेट की कमी है, इंटरनेट स्लो चलता है,
स्लो चलता है, लेकिन बच्चे स्लो नहीं चलते ना,
आयोडीन की कमी होती थी ना हमारे बच्चों में, अब इंटरनेट की कमी है।
ओ, अब मुझे समझ आया मैं छोटी क्यों रह गई हूँ,
आयोडीन की कमी
यस, मेरी माँ ने ख्याल नहीं किया,
नहीं किया होगा। हाँ, आपकी अम्मा को चाहिए था।
हाँ, और पढ़ी लिखी नहीं थी ना मेरी अम्मा, उसने प्रॉपरली मुझे आयोडीन दिया नहीं। देखो मैं कितनी छोटी रह गई हूँ।
आपकी अम्मा जब होंगी तो मेरी नानी से मुझे पूछना, फिर मुझे मैसेज देना होगा उनको,
या दादी से।
दादी से तो खैर लेट हो गया, कोई बात नहीं, चले।
तो आप सोचिए मेरी अम्मा कब पैदा होगी, जब मैं 1945 में पैदा।
तो वो तो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया थी।
हाँ,
और क्या,
और क्या, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही तो खत्म हुई है बेचारी,
तो थी भारत। चले जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपका।
और कल मुझे छुट्टी है ना,
दो दिन आप छुट्टी कर। आई विल टेक केयर हियर,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
770
दो दिन तुम्हारी बूथी नहीं देखनी,
दो दिन आप छुट्टी करें और इंजॉय करें,
इंजॉय का मजा लें,
इंजॉय का मजा लें, और इंशाल्लाह
जिंदगी रही,
याद हो गया,
और आप जिंदा रही,
आप जिंदा रही,
तो हम मंडे को मिलेंगे
इंशाल्लाह, मंडे को आपसे
इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया तमाम सामीन का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरे, जो मुबारक आज दिन। आई होप कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर लें, लेकिन सम टाइम मुश्किल हो जाता है। नहीं जनाब, कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, कहीं बाहर निकलें, घूम लें, फिर लें, फिर बर्फ पड़ जाएगी तो फिर ना बोलना। वैसे भी मैं कल टायर चेंज करा लूंगा, तो मैंने माजी भाई से आज ही कह दिया था कि इंशाल्लाह इस बार बर्फ कम ही पड़ेगी, लेकिन यू नेवर नो, बर्फ ज्यादा भी पड़ सकती है। चलें जनाब, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, आरफा मुजफ्फर साहिबा की तरफ से, माजी जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से, और मैं आमिर अहमद आपका होस्ट की तरफ से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो मंडे फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे, मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, मेरा वक्त में डूबा दिल बदल दे, मैं वहदत पिला मखमूर कर दे, मैं वहदत पिला मखमूर कर दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे, मेरा वक्त में डूबा दिल बदल दे, मेरा वक्त में डूबा दिल बदल दे।
सामिक्रम टोरंटो गिरदनवा के इलाकों में अब टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज का, तो आइए सुनते हैं मगरिब की अजान।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Virash Broadcasting Corporation, and operates on an assigned frequency of 770 kilohertz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
Tell us, we'll see. Thank you. आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
Shahoo! Come on. ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो रंगली अदाएं देखी ना वो प्यारी सी नादानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थारे जैसा ना कोई 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 बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू रातों का सुकून रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी कहीं कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी चलानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थारे जैसा ना कोई 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 अपने नसीबों में या हौसले की बातों में सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है संग तुझे रखना है तूने संग रहना मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं जो है सबको दिखानी कहीं तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं वही करना जो है कहना जग घूमे थारे जैसा ना कोई 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 लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा तूने जब भूल किताबों काले होंगे देने वाला भी तुझे याद तो होगा तू
तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुरा